अध्याय 6 वेदांग। वेदांग का अर्थ, महत्व और उनकी संख्या। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग, वेदस्य अंगानि। अंग का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। प्रारंभ में वेदांग स्वतंत्र विषय न होकर वेदाध्ययन के लिए विशिष्ट उपयोगी साधन थे, बाद में ये स्वतंत्र विषयों के रूप में विकसित हुए। वेदांगों का महत्व, वेदों के मंत्रों के उच्चारण के ज्ञान के लिए शुद्ध शब्दार्थ ज्ञान के लिए, विनियोग के लिए, काल निर्धारण के लिए तथा छंदों ज्ञान के लिए सहायक साहित्य की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतएव एक एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न 6 वेदांगों का प्रणयन हुआ। शब्दों का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जाए इसके लिए शिक्षा ग्रंथों की सृष्टि हुई। शब्दों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है तथा उदात्त आदि स्वर क्या है इनके ज्ञान के लिए व्याकरण और प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। वेदों में गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगति आदि छंद हैं, उनकी रचना एवं उच्चारण आदि के लिए छंद शास्त्र का प्रणयन हुआ। शब्द कैसे बने, उनका मूल अर्थ क्या है, पारिभाषिक अर्थ क्या है इसके ज्ञान के लिए एक स्वतंत्र निरुक्त शास्त्र या निर्वचन शास्त्र बना। यज्ञ कब किया जाए, शुभ मुहूर्त कब है, पूर्णिमा आदि दिन कब पड़ रहे हैं इसके ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता अनुभव की गई, तदर्थ ज्योतिष शास्त्र बना। प्रत्येक यज्ञ की आद्योपांत क्या विधि होगी, बड़े और छोटे यज्ञों के लिए क्या आवश्यक वस्तुएं चाहिए, यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़े जाएं, मंत्रों के पाठ के लिए कितने ऋत्विक चाहिए, यज्ञ की वेदी कैसी, किस प्रकार की, कितनी बड़ी होनी चाहिए इत्यादि के सूक्ष्मता से निर्देशन के लिए कल्प ग्रंथों का प्रणयन हुआ। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है मंत्र के उच्चारण में यदि स्वर या वर्ण की थोड़ी भी त्रुटि हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका उदाहरण दिया है इंद्र शत्रुवर्धस्व, वृत्र ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया किंतु इंद्र शत्रु अर्थात वृत्र की जीत हो वेद पाठियों ने स्वर की त्रुटि कर दी, जिसका फल यह हुआ कि इंद्र की जीत और वृत्र मारा गया। अतः वेदों के स्वर वर्ण अर्थ आदि का स्पष्ट ज्ञान अनिवार्य है। मंत्रो ही न स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थम आह स वाग्वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। वेदांगों की संख्या और उनके नाम। वेदांग 6 हैं, उनके नाम हैं 1 शिक्षा, 2 व्याकरण, 3 छंद, 4 निरुक्त, 5 ज्योतिष, 6 कल्प। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पशेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखे गए हैं। वैदिक कर्मकांड, मंत्रों का विनियोग एवं यज्ञ विधि आदि के नियम बहुत विस्तृत और व्यापक थे, अतः संक्षेप में स्मरणार्थ सूत्र शैली को अपनाया गया है। पाणिनीय शिक्षा में इन 6 वेदांगों का वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में वर्णन है। जैसे छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त कान हैं, शिक्षा नाक है और व्याकरण मुख हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। वेदांग का सर्वोत्तम उल्लेख मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। 1 शिक्षा। शिक्षा का अर्थ वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। सायण ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा का अर्थ दिया है जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अतएव शिक्षा का उद्देश्य है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण किया जाता है, उसमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है, उनका विभाजन किस रूप में होता है, कितने स्थान और प्रयत्न है, शरीर वायु किस प्रकार वर्ण के रूप में परिवर्तित होती है, कितने स्वर हैं, किस स्वर का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है इत्यादि। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख है, ये है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. वर्ण या ध्वनियाँ। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। स्वर 13, स्पर्श क से म तक तथा ल और ल 27, य र ल व व श श स ह 8. विसर्ग अनुस्वार जीवामूली और उपधमानीय क प से पहले आधे विसर्ग के चिन्ह 4 बराबर 52। पाणिनीय शिक्षा में संस्कृत में वर्णों की संख्या 63, समृत और विवृत अ को पृथक मानने पर 64 मानी गई है। इनका विवरण यह है, स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि भेद से 21, क से म 25, य से ह 8, य र ल व के द्वित्व रूप 4, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूली उपधमानी और प्लुत लृ 5। इस प्रकार ये 63 वर्ण होते हैं। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वावर्णाः शंभु मते मताः। 2. स्वर। स्वर 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3. मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की 3 मात्रा होती है। 4. बल। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न 2 है, आभ्यंतर और वाय। स्थान 8 है, कंठ, तालु आदि। 5. साम। साम का अभिप्राय है समविधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर से उच्चारण। वर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो, किसी वर्ण को दबाकर न बोले, बहुत शीघ्रता से न बोले, स्वर एवं अर्थ ज्ञान सहित प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण करे। 6. संतान। इसका अर्थ है संहिता अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को लगाना। इसके लिए संधि नियमों को जानना और उनकी यथास्थान उपयोग करना। पाठक के गुण। पाणिनीय शिक्षा में मंत्रों आदि के पाठकर्ता के 6 गुण बताए गए हैं। ये हैं, माधुर्य, मधुर ध्वनि से बोलना। 2. अक्षर व्यक्ति, अक्षरों का सुस्पष्ट उच्चारण। 3. पद छेद, पदों को पृथक पृथक बोलना। 4. सुस्वर, स्वर से बोलना। 5. धैर्य, शांतिपूर्वक बोलना। 6. लय समर्थ, लय या राग के साथ बोलना। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेति पाठका गुणाः। पाठक के दोष। पाणिनीय शिक्षा में ही पाठक के 6 दोषों का भी वर्णन है। इन दोषों का परित्याग करना चाहिए। ये हैं, 1. गीति, सामान्य मंत्र को गाने के ढंग से बोलना। 2. शीघ्र, शीघ्रतापूर्वक बोलना। 3. शिरः कंपी, बोलते समय सिर हिलाना। 4. लिखित पाठक, मौखिक के स्थान पर लिखा हुआ पढ़ना। 5. अनर्थज्ञ, अर्थ ज्ञान के बिना बोलना। 6. अल्पकंठ, अधूरे याद किए हुए मंत्र को बोलना। गीते शीघ्र, शिरः कंपी तथा लिखित पाठक, अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडेति पाठकाधमाः। शिक्षा ग्रंथ। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 है। इनमें मंत्रों के उच्चारण आदि का विस्तृत वर्णन है। 32. शिक्षा ग्रंथों का एक संकलन शिक्षा संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ है। इनमें ध्वनि विज्ञान से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। स्वर और व्यंजनों का भेद, स्वरों के उच्चारण संबंधी अनेक भेद, वर्णों के उच्चारण में स्थान प्रयत्न आदि का विवरण, अनुस्वार अनुनासिक का अंतर, विसर्ग के विभिन्न रूप, वर्णोच्चारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया, उदात्त स्वर आदि का सरगम के स्वरों से संबंध, ह्रस्व ए ओ का अस्तित्व, ओ औ के समृत विवृत रूप, वर्णोच्चारण की विधि, संधियों का विवेचन आदि। विशेष उल्लेखनीय शिक्षा ग्रंथ। 1. पाणिनीय शिक्षा। यह अत्यंत प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ है। प्रत्येक वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। इसमें 60 श्लोक हैं। मुख्य विषय है वर्णों की संख्या, उच्चारण प्रक्रिया का ध्वनि शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, समृत विवृत, घोष अघोष, स्पष्ट ईषत स्पृष्ट आदि भेदों का वर्णन, पाठक के गुण दोषों का वर्णन आदि। 2. भारद्वाज शिक्षा। इसमें पदों की शुद्धता तथा ध्वनि भेद से उदात्त आदि स्वरों में भेद का वर्णन है। 3. याज्ञवल्क्य शिक्षा। इसमें 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है। वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रतिभाव आदि का वर्णन है। चार, प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, इसमें स्वर, वर्ण आदि की शिक्षा का विस्तृत विवेचन है। प्राचीन व्याकरणों के मतों का भी उल्लेख है। पांच, नारदीय शिक्षा, सामवेद के स्वरों का विस्तृत विवेचन है। अन्य कुछ मुख्य शिक्षा ग्रंथ ये हैं। एक, व्यास शिक्षा, दो, वासिष्ठ शिक्षा, तीन, कात्यायनी शिक्षा, चार, पाराशरी शिक्षा, पांच, मांडव्य शिक्षा, छह, माध्यंदिनी शिक्षा, सात, वर्ण रत्न प्रदीपिका, आठ, केश शिक्षा, नौ, स्वरांकन शिक्षा, दस, स्वर भक्ति लक्षण शिक्षा आदि। इनके अतिरिक्त कुछ शिक्षा सूत्र भी मिलते हैं। इनमें आपिशली पाणिनी और चंद्रगोमी के शिक्षा सूत्र प्रकाशित हैं। इनमें ध्वनि विज्ञान से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्य हैं। इनमें अक्षरों की उत्पत्ति स्थान और प्रयत्न बाह्य और आभ्यंतर कारण आदि का विवेचन है। दो, व्याकरण क, संस्कृत व्याकरण। व्याकरण शास्त्र के विवेचन को दो भागों में बांटा जा सकता है। क, लौकिक व्याकरण या संस्कृत व्याकरण। ख, वैदिक व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में पाणिनि आदि आचार्य हैं तथा अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि ग्रंथ हैं। वैदिक व्याकरण में प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं। इनका यहाँ पृथक विवेचन प्रस्तुत करना उपयुक्त है। व्याकरण का अर्थ व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। इसमें यह विवेचन किया जाता है कि शब्द कैसे बनता है, इसमें क्या प्रकृति है और क्या प्रत्यय लगा है, तदनुसार शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है। जिस प्रकार शरीर में मुख सौंदर्य भावाभिव्यक्ति और गौरव का प्रतीक है, उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र शब्द साधुत्व प्रकृति प्रत्यय विवेचन और शब्दार्थ ज्ञान का साधन है। इसमें पद पदार्थ वाक्य वाक्यार्थ आदि का विस्तृत विवेचन होता है। व्याकरण ही शुद्ध अशुद्ध, संस्कृत असंस्कृत, प्राकृतिक अपभ्रंश, नाम आख्यात आदि का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। व्याकरण का दार्शनिक रूप, यजुर्वेद के एक मंत्र में व्याकरण का पारिभाषिक अर्थ दिया गया है कि यह सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, सूक्ष्म और स्थूल का व्याकरण प्रस्तुत करता है। साथ ही यह भी बताता है कि इनमें से कौन सा ग्राह्य है और कौन सा अग्राह्य है। मंत्र का कथन है कि प्रजापति ने सत्य और अनृत का व्याकरण किया। उसने सत्य को श्रद्धा के योग्य या ग्राह्य बताया और असत्य को अग्राह्य। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापतिः, अश्रद्धामनृते दधात श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः। पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद के एक मंत्र का व्याकरण परक अर्थ किया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरविति महो देवो मर्त्य आविवेश, अर्थात शब्द ब्रह्म रूपी वृषभ के चार सिंह हैं, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, उसके तीन पैर हैं वर्तमान भूत और भविष्यत काल, उसके दो सिर हैं सुप और तिंग प्रत्यय, उसके सात हाथ हैं प्रथमा द्वितीया आदि सात विभक्तियां। यह तीन स्थानों पर बधा हुआ उन कंठ और सिर में ऐसा शब्द ब्रह्म रूपी महादेव मनुष्य के शरीर में व्याप्त है। व्याकरण के उद्देश्य, पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के पांच प्रयोजन बताए हैं। एक, रक्षा, वेदों की रक्षा के लिए। दो, ऊह तर्क, यथास्थान विभक्ति परिवर्तन वाच्य परिवर्तन आदि के लिए। तीन, आगम, ब्राह्मण को निष्काम भाव से वेद पढ़ना चाहिए इस आदेश की पूर्ति के लिए। चार, लघु, सरल ढंग से शब्द ज्ञान के लिए। पांच, असंदेह, शब्द और अर्थ विषयक संदेह के निराकरण के लिए। रक्षोहागमलध्व संदेहा प्रयोजनम, पतंजलि ने इनके अतिरिक्त भी व्याकरण के कुछ प्रयोजन बताए हैं। एक, अपशब्दों के प्रयोग से बचना। दो, शुद्ध अशुद्ध शब्दों का ज्ञान कराना। तीन, शब्दार्थ का ज्ञान कराना। चार, धर्म लाभ या उत्तम संस्कारों को जागृत करना। पांच, शुद्ध नामकरण आदि की विधि को जानना। ब्राह्मण ग्रंथों में व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली मिलती है। गोपथ ब्राह्मण में ये पारिभाषिक शब्द मिलते हैं, धातु, प्रातिपदिक, आख्यात, लिंग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, व्याकरण, विकार, मात्रा, वर्ण, अक्षर, पद, संयोग, स्थान, नाद, करण आदि। ऐतरेय ब्राह्मण में सप्तधा सात विभक्तियां तथा मैत्रायणी संहिता में षड् विभक्तियां छह विभक्तियां का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि व्याकरण विषयक विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों के समय से ही प्रारंभ हो गया था। संस्कृत व्याकरण के आचार एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ। पाणिनी से पूर्व व्याकरण। आचार्य पाणिनी ने अष्टाध्यायी में अपने पूर्ववर्ती 10 आचार्यों का उल्लेख किया है। इनमें मुख्य हैं 1. आपिशली, 2. काश्यप, 3. गार्ग्य, 4. भरद्वाज, 5. शाकटायन, 6. स्फोटायन। प्रातिशाख्य आदि में लगभग 75 पूर्व पाणिनी आचार्यों का उल्लेख है। इनमें प्रमुख हैं 1. शिव, 2. बृहस्पति, 3. इंद्र, 4. आचार्य ब्याडी, 5. आत्रेय, 6. कात्यायन, 7. कार्णव, 8. गौतम, 9. यास्क, 10. वाल्मीकि, 11. शाकल्य, 12. शाकल, 13. शौनक, 14. शांखायन, 15. हारित। इन आचार्यों में से 4 विशेष उल्लेखनीय हैं। 1. शिव या महेश्वर। शिव के व्याकरण को ईशान व्याकरण कहा जाता था। अ, ई, ऊड़ आदि 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। 2. इंद्र, इनका ऐन्द्र व्याकरण था। तिब्बतीय ग्रंथों के अनुसार इसका परिमाण 25,000 श्लोक था, अर्थात पाणिनि के अष्टाध्यायी से लगभग 25 गुना बड़ा। 3. ब्याडी, आचार्य ब्याडी महावैयाकरण और दार्शनिक थे। इनका अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ संग्रह था। इसका परिमाण 100,000 श्लोक माना जाता है। यह वाक्य पदी के तुल्य व्याकरण दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ था। 4. स्फोटायन, ये स्फोटवाद सिद्धांत के आदि प्रवक्ता हैं। यंत्र सर्वस्व के रचयिता भरद्वाज ने चित्रिण्ये वेति स्फोटायन सूत्र के द्वारा आचार्य स्फोटायन को विमान शास्त्र का विशेषज्ञ वैज्ञानिक बताया है। आचार्य पाणिनि एवं परवर्ती आचार्य इस काल के अति महत्वपूर्ण आचार्य हैं। 1. पाणिनि, आचार्य पाणिनि के अन्य नाम हैं दाक्षी पुत्र, शाला तुरी और आहिक। इनका सुविख्यात ग्रंथ अष्टाध्यायी है। इसमें 8 अध्याय हैं, अतः इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। इसमें सूत्रों की संख्या 3,997 है, अर्थात लगभग 4,000। अष्टाध्यायी का परिमाण 1,000 श्लोक माना जाता है। 2. कात्यायन, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखे हैं। इन्हीं वार्तिकों को आधार बनाकर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। 3. पतंजलि, इनके अन्य नाम हैं गुणिका पुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, शेषाही। आधुनिक विद्वान गोनर्द का अर्थ वर्तमान गोंडा मानते हैं और उन्हें गोंडा निवासी बताते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी के सूत्रों पर बृहदाकार भाष्य महाभाष्य है। यह व्याकरण दर्शन का अति प्रामाणिक ग्रंथ है। इनको पातंजलि योग सूत्र और चरक संहिता का भी रचयिता माना जाता है। मुनित्रय में पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि की गणना है। ये सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम। 4. भर्तृहरि, ये उज्जैन के निवासी माने जाते हैं। इनकी कृति वाक्यपदीय व्याकरण दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें 3 खंड हैं, 3 कांड हैं। 1. ब्रह्म कांड, 2. वाक्य कांड, 3. पद कांड या प्रकीर्ण कांड, 5. जयादित्य और वामन, दोनों ने अष्टाध्यायी की टीका काशिका लिखी है। यह अष्टाध्यायी की सर्वोत्तम टीका है। 6. कैयट, इनकी महाभाष्य पर प्रदीप नाम की बहुत प्रामाणिक टीका है। ये काश्मीरी पंडित थे। 7. भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों को विषयानुसार 14 प्रकरणों में बांटकर सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की। ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं 1. शब्द कौस्तुभ, 2. सिद्धांत कौमुदी, 3. प्रौढ़ मनोरमा, 8. नागेश भट्ट, ये महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। ये व्याकरण के मर्मज्ञ थे। इनके ग्रंथ हैं 1. उद्योत टीका, 2. लघु शब्देन्दु शेखर, 3. बृहत शब्देन्दु शेखर, 4. परिभाषेन्दु शेखर, 5. स्फोटवाद, 6. मंजूषा, 7. लघु मंजूषा, 8. परम लघु मंजूषा, 9. वरद राज, ये लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं। 10 अन्य व्याकरणों में उल्लेखनीय है, एक वृषभ देव, दो पुण्य राज, तीन हेला राज, चार मंडन मिश्र, पांच कौंड भट्ट, छह भट्टी,